السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران. ہماری دو کلاسز ہو چکی ہیں, انٹروڈکٹری کلاس. آج انشاءاللہ ہم لوگ آیات شروع کریں گے, لیکن آیات شروع کرنے سے پہلے سورۃ آل عمران کے بارے میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیں گے کہ یہ کن موضوعات پر, یعنی کن ٹاپکس پر مبنی سورۃ ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم سورۃ آل عمران کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں, اور علماء کرام کی جو کوششیں ہیں اسی کو ہم یہاں پر ہائی لائٹ کریں گے, اور آج کے ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں اس پر ہم منطبق کرنے کی کوشش کریں گے اس کو, یا آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو کیسے فتنوں سے بچا سکتے ہیں. قرآن ہر دور کے لیے ہے, ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے. تو زندگی کے وہ شعبے جن کے تعلق سے احکامات قرآن میں موجود ہیں, اب دیکھیے قرآن زندگی کے بہت سارے گوشوں سے ہمیں روشناس کرواتا ہے, یعنی متعارف کرواتا ہے, اور زندگی کے ہر شعبے میں حاوی ہے. اس میں چند ایک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو عقائد آتے ہیں جن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے واجب ہے, یعنی اللہ کی ذات پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن, اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور یہی جو بیسک عقائد ہیں ہمارے, یہ ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہیں, یعنی پھر یہ ڈفرینشیٹ ہم کو کروا دیتے ہیں. دوسری اہم بات قرآن میں جو ہمیں ملتی ہے کہ آسمان اور زمین کے نظام اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس پر غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کرنا. یعنی قرآن میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی تاکید کی ہے, افلا تعقلون, کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے, افلا تدبرون, کہ تم تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے. تو غور و فکر کی بات کی گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے قرآن میں ہمیں جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور جن باتوں کی طرف ہمیں ابھارا گیا ہے, اکسایا گیا ہے, کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, مخلوق کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں رکھی ہیں, جو اسرار پوشیدہ ہیں, اس کو ہم معلوم کر سکیں, اس کی حقیقتوں کو جان سکیں, اور ان چیزوں میں فکر اور دلیل کے ساتھ ہم مزید اللہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل ہوں, اللہ تعالیٰ پر مزید ہمارا ایمان بڑھے, اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل کے اندر اور ہماری زبان سے بھی جاری ہو, اور یہی ہمارا ایمان ہو کہ یہ ساری چیزیں صرف ایک اکیلے اللہ ہمارا جو خالق اور ہمارا مالک ہے اس نے پیدا کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ہمارے دل بھر جائیں, صرف محض تقلید اور دیکھا دیکھی کی روش سے ہم باز آ جائیں, یعنی بس ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارے بچے بھی مسلمان ہوں گے. تو ایک ہوتا ہے پیدائشی مسلم, اور ایک ہوتا ہے خاص اللہ کا بندہ مسلمان جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر, یعنی اس کے دل سے اندر سے ایک تڑپ اس کو پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں اللہ کے لیے پھر کیا کروں, میرے رب کے لیے میں کیا کروں جس نے مجھے انسان بنایا, جس نے میرے لیے اتنی تمام چیزیں مسخر کر دیں. تو یہ غور و فکر کی وجہ سے ایک عجیب شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. تیسری بات ہے کہ قرآن جو ہماری رہنما کتاب ہے, جو ہمارے لیے ہدایت ہے, اس میں پیچھے گزرنے والی جتنی قومیں تھیں ان کے بہت سارے واقعات قرآن میں دیے گئے ہیں, اور یہ واقعات کس لیے دیے گئے ہیں, تاکہ ہم عبرت حاصل کریں, ہم نصیحت حاصل کریں. تو جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں قرآن کے, پچھلی قوموں کے, تو وہ ہمیں مزید ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور ہمیں نصیحت قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. ان واقعات کی وجہ سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے اور ہم وہ غلط روش, غلط راستے پر چلنے سے بچ جاتے ہیں. یہ قوموں کے واقعات جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین, وہ شریعت بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے شریعت سے منہ موڑا, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی رہنمائی سے منہ موڑا, ان کا کیا انجام ہوا, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ رکھا, ان کی دنیا بھی کامیاب ہوئی, ان کی آخرت بھی کامیاب ہوئی, اور جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں. یہ سب سے اہم بات, انہیں قرآن پڑھتے ہوئے آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں جب بھی قصص آئیں, واقعات آئیں. چوتھی اہم بات ہم کو قرآن سے جو سیکھنے کو ملتی ہے, قرآن کی طرف ہم کیوں رجوع کر رہے ہیں, ہم کیوں تفسیر پڑھ رہے ہیں, ये नहीं कि हम सिर्फ अपने इल्म में इजाफा चाहते हैं, नहीं, इल्म इल्म वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। हम तो कुरान से वैसा सबक लेना चाहते हैं जैसे सहाबा ने लिया था, जैसे सहाबा ने इसको समझा था, जैसे सहाबा ने इसको अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट किया था या पूरी दुनिया के सामने इसको पेश किया था। तो चौथी और बहुत ही अहम बात यह है कि कुरान हमें ऐसे अखलाक फाजिला की तालीम देता है, यानी हमारे अखलाक इतने बेहतरीन बनाता है, और ये अखलाक कुरान की जो तालीमात है वो हमारे अंदर इज्तिमाई तौर पर भी यानी कलेक्टिवली और इंडिविजुअली भी इनफरादी तौर पर भी हमारे अंदर एक ऐसी सोच, ऐसी तड़प, ऐसी सीरत और किरदार हमारे अंदर पैदा करता है कि जिससे हमारी ख़ुद की भी इस्लाह हो और पूरी सोसाइटी की इस्लाह हो, जो इंसान को महज़ब बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा। तो कुरान इनफरादी तौर पर भी हम पर असरअंदाज होता है और इज्तिमाई तौर पर भी हम पर असरअंदाज होता है। हमें कुरान की तालीमत महज़ब बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करती हैं जो दुनिया की किसी कौम में नहीं हो सकती, जैसे सब्र है, सदाकत है, सच्चाई, वफादारी, अमानतदारी, बुरे अखलाक से बचना, उन तमाम बातों से बचना जो इंसानी ज़िंदगी को हलाक कर देते हैं या उसकी बदबख्ती का सबब बनते हैं, जैसे झूठ है, खयानत है, वादा खिलाफी है, अहद को तोड़ देना है, बुराई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने वाले लोग अपने नफ्स की भी इस्लाह करते हैं और पूरे मुआशरे की इस्लाह करते हैं। तो कुरान दरअसल हमें महज़ब बनाता है, हमें तहज़ीब सिखाता है, एक ऐसी कौम, ऐसी मिल्लत बनाकर हमें उभारता है, ऐसी उम्मत बनाकर कि जिसको देखकर लोग पहचान लेते हैं कि हाँ, ये हैं कुरान पढ़ने वाले। तो ये अखलाक हमारे अंदर पैदा हो। पाँचवीं बात है मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत, यानी चूँकि हमको तो अल्लाह तआला ने पैदा ही इसलिए किया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, जहाद है, तकरीबन इसके ताल्लुक से कुरान में 140 आयतें आई हैं, तो वो हमको कुरान से सीखने को मिलता है। फिर कुरान हमें सिर्फ इबादत यानी कोई एक शोबा ही नहीं दिखा देता, बल्कि कुरान हमें सिखाता है कि उदखुलु फिस्सिल्मी काफ़ा, है ना। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं मस्जिद में तो मुसलमान रहूं और शादी हॉल में मैं मेरा जो दिल चाहे करूं, ऐसा कर सकते हैं आप? या आप कहें कि मैं मस्जिद में तो मुसलमान रहूं या दर्स में जा रही हूं तो मुसलमान रहूं और बाज़ार में मैं जो चाहे करूं, ऐसा हो सकता है? आप बताइए, क्या आप वक्ती या जुज़वी मुसलमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप मुकम्मल 24/7 आपको हर हाल में मुसलमान ही रहना है, चाहे आप बाज़ार में हों, चाहे आप ख़ुद बिज़नेस कर रहे हों, चाहे आप कुछ ख़रीदने जा रहे हों, चाहे आप शादी कर रहे हों, चाहे आप निकाह कर रहे हों, चाहे आप जो भी कुछ कर रहे हों, आप हर वक्त मुसलमान हैं। उदखुलु फिस्सिल्मी काफ़ा। तो ख़ानदानी निज़ाम, शादी, तलाक और इनसे रिलेटेड जितने अहकाम हैं, मसलन हक के महर है, बीवी के अखराजात हैं, दूध पिलाना है, रज़ात, नसब, इद्दत, वसीयत, विरासत, तमाम के तमाम अहकामात इसमें शामिल हैं। यानी आपकी ज़िंदगी इस्लाम के दायरे में ही घूमती रहती है, उससे बाहर नहीं निकल सकते आप। और इससे रिलेटेड आप देखिए कुरान में तकरीबन 70 से ज़्यादा आयत आई हैं, आप सोचें ज़रा। यानी जो ख़ानदानी निज़ाम के लिए निकाह के मामला, तलाक़ के महर, हक के महर, अखराजात है, नान नफ़का है, नसब है, रज़ात है, इद्दत है, वसीयत है, विरासत है, इन सब के ताल्लुक से। फिर जो माली मामलात हैं, ये तो हो गए ख़ानदानी मामलात। ये जो माली मामला थे, सातवां जो हमको मिलता है इसमें कुरान में टॉपिक, माली मामला के अहकाम, जैसे ख़रीदो फरोख्त है, लेन देन है, किराया है, किराएदार हैं, रहन है, लेन देन है, यानी जो रहन चीज़ें रखी जाती हैं ना, तिजारत है, इससे रिलेटेड भी तकरीबन 70 आयत आई हैं। आप सोचिए सुभान अल्लाह, पूरे कुरान में 70 से ज़्यादा आयत, ये तकरीबन 70 आयत इन चीज़ों से मुतालिक आई हैं। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आप देखिए ये आपकी ज़िंदगी के काम है ना सारे, ये जो रोज़मर्रा हमको पेश आते हैं। कौन से काम हमको रोज़मर्रा पेश आते हैं, क्या है हमारे साथ? आप देखें, खाना पीना लगा हुआ है, लेन देन है, ख़रीदो फरोख्त है, तिजारत है, किराया है, रहन है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो कुरान हमें कहाँ, नहीं कैसे गाइड करे? क्या कुरान पढ़ने वाले गारों पहाड़ों में जाकर रहेंगे या दुनिया में ही रहेंगे? आप बताइए, या कुरान इंसान को दुनिया से अलग कर देता है कि बस मस्जिद में बैठो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह करते रहो? नहीं, आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कुरान के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। और इसी दुनिया की बात करते हैं कुरान, कि दुनिया से कोई हटकर बात नहीं करता। फिर आठवां जो टॉपिक हमको मिलता है कुरान में, जराइम के अहकाम। यानी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर शोबे में हमारी रहनुमाई की है, हर शोबे में जुर्म और सज़ा के ताल्लुक से हुदूद हैं, चोरी है, ज़िना है, तोहमत है, अल्लाह ताला की ज़मीन में मुहारबा है यानी रहज़नी है, डाका डालना, इसके अहकाम हमको मिलते हैं। और तकरीबन इसके ताल्लुक से 30 आयात हमको मिलती हैं पूरे कुरान में, हुदूद के ताल्लुक से, सज़ाओं के ताल्लुक से। यानी सुभान अल्लाह, आप देखें कुरान के सिर्फ दीनदारों की बात करते नहीं, बल्कि कुरान तो चोरों की भी बात करता है, जीना लगाने वालों की भी बात करता है, तोहमत लगाने वालों की भी बात करता है, क्योंकि सब हम इस मुआशरे में रहने वाले इंसान हैं और हर एक से गलती हो सकती है, हो सकती है हर एक से गलती। लेकिन हमारा दीन हमें बताता है कि नहीं, सब किस्म के लोग होंगे मुआशरे में, तुम उनको मुआशरे से काट कर अलग तो नहीं फेंक सकते, तुम उनको जो उनकी सज़ा है दो, और उस सज़ा के बाद उनको उनकी तौबा कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बिल्कुल नॉर्मल लोग होंगे, उनको तुम तंज नहीं कर सकते उनके ऊपर, अगर कोई अपनी अपने जुर्म से माफ़ी मांग ले और तलाफी कर ले उसकी तो, है ना। फिर नवा पॉइंट हमको मिलता है जो टॉपिक कुरान में, कि जंग है, सुलह है, या जो भी इंटरनेशनल सारे जो डीलिंग्स हैं, माल गनीमत, जहाज, जंगी कैदी, माहदात यानी कॉन्टेक्ट जो होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ, जजिया वगैरह, उन सब के अहकाम हमको मिलते हैं। सुभान अल्लाह, देखिए कौन सा शोबा ऐसा है जिसमें कुरान ने हमारी रहनुमाई ना की हो, सुभान अल्लाह। फिर दसवां जो टॉपिक हमको उसमें मिलता है निज़ाम हुकूमत, जिसमें हुक्मरानों के लिए मशवरा, अदल, मसावात, लोगों में शरई अहकाम किस तरह से नाफिज किए जाएंगे, उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे, जो अदालतें होंगी मुसलमानों की उसमें शरीयत के मुताबिक फ़ैसले होंगे, और ये वाजिब है लोगों पर, और अल्लाह ताला के अहकाम को मानना ये उन पर फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला के और रसूल के अहकाम की इताअत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। और फिर जो ग्यारहवां हमको टॉपिक मिलता है, इवन अगर जो मालदार लोग हैं और जो मोहताज लोग हैं उनसे रिलेटेड जो इज्तिमाई ज़िंदगी की तंजीम है, कि अगर एक मालदार है तो ठीक है वो मालदार है, लेकिन उस पर अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने आसपास के लोगों की मदद करे जो मोहताज हैं, जो फ़ुकरा हैं, जिसकी वजह से एक इज्तिमाई अदल का निज़ाम कायम हो सकता है, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप देखिए अगर मुआशरे में अगर ये अमीर अमीर से अमीर तर होता जाए और अमीर गरीबों की फ़िक्र ना करे, तो गरीबों के अंदर क्या होगा, दुश्मनी पैदा होगी एक तरह से अमीरों के ताल्लुक से, जब ही तो फिर चोरी और डाकाजनी होती है और रॉबिनहुड बनते हैं लोग, कि अमीरों का माल चुरा कर गरीबों को देना, ये इस्लाम हमें नहीं सिखाता इस तरह की चीज़ें। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे ख़ुद के दिल में वो हमदर्दी और गमगुसारी पैदा हो अपने गरीब मुआशरे के लोगों के लिए, जो मोहताज हैं, जो मस्कीन हैं, तो हम उनकी ख़ुद से मदद करें। तो इसके ताल्लुक से हमको कुरान में बहुत सी रियायत मिलती है। आप सोचें कि यानी इन्फाक के ताल्लुक से या दूसरों की मदद के ताल्लुक से ऐसे जो अहकाम आए हैं कुरान में, उसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि ऐसी आयात की तादाद 500 के लगभग है। सुभान अल्लाह, आप सोचें 500 से ज़्यादा, 500 आयत में कुरान की ऐसी मिलती हैं जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखने की हमको तालीम दी गई है। सुभान अल्लाह, आप देखें कि कितना बेहतरीन ये कलाम अल्लाह ताला ने उतारा है, कि जिसकी वजह से हमारी पूरी इज्तिमाई ज़िंदगी का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुसन खूबी अंजाम पा सकता है, एक सही इस्लामी मुआशरा बन सकता है। और एक हदीस में आया था जिसमें रसूल अकरम ने फरमाया था कि इन्ना सतकून फितनतुन क़ील व मल मखरज मिन्हुम या रसूलुल्लाह क़ाल किताबुल्लाह फ़ीही नबाउ मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम। तर्मिज़ी की हदीस है। सुभान अल्लाह, देखिए सहाबा का तर्ज अमल कैसा था, कि रसूल अकरम ने एक दफ़ा ये बात इरशाद फरमाई कि अनकरीब फितने नमूदार होंगे, फितने पैदा होंगे। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इन फितनों से निकलने का ज़रिया क्या होगा। सुभान अल्लाह, देखें उनको फितनों से निकलने की फ़िक्र ज़्यादा थी, कैसे थे सहाबा अकरम, कितनी उनको फ़िक्र थी। तो आपने क्या फ़रमाया, देखें अल्लाह की किताब जिसमें तुमसे पहले लोगों की ख़बर मौजूद है और बाद में आने वालों की भी, और तुम्हारे अपने ताल्लुक़ से भी हुक्म मौजूद है। एक और हदीस में आता है कि बिलाशुबा कुरान हलाल और हराम, मुहकम और मुतशाबे और अमसाल के ज़िक्र पर मुश्तमिल है, लिहाजा तुम उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो, उसकी मुहकम आयात पर अमल करो, उसकी मुतशाबेहात पर ईमान लाओ और उसकी अमसाल से इबरत हासिल करो। और हमारा आज का टॉपिक जो कुरान की आयात है सूरह आल इमरान की, इसमें मुतशाबेहात का ही जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। फ़क़ाल इन्नमल कुरआनु तिसअतु अहरुफिन सअनब्बिउकुम फ़ी बैति शिअरिन बिला ख़ललिन हलालुन हरामुन मुहकमुन मुतशाबिहुन बशीरुन नज़ीरुन इज़्ज़तुन फ़िद्दतुन मसलिन बशीरुन नज़ीरुन इज़्ज़तुन क़िद्दतुन मसलिन। बाज़ लोगों ने कहा कि कुरान 9 चीज़ों पर मुश्तमिल है, जो मैं तुम्हें किसी कमी बेशी के बगैर बता रहा हूँ। इन्हें एक शायर ने इसको शेर में इस तरह से प्रो दिया है, हलाल हराम मोहकम मुतशाबे बशीर नज़ीर नसीहत क़स्से और अमसाल। और इसमें जो उलूमुल क़ुरान के टॉपिक्स के ज़ेरे तहत हमको जो चीज़ मिलती है, तीन चीज़ें मिलती हैं, तौहीद, तज़कीर और अहकाम। तौहीद आप देखिए, जब तक मखलूक को इस बात का एहसास नहीं होगा कि अल्लाह सुबहाना तला वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा रब है, तो फिर वो शिर्क की तरफ नहीं जाएंगे। यानी अल्लाह ताला के जो अस्माउ सिफ़ात हैं उसके ज़रिए से अल्लाह ताला की मारफत हासिल करना। फिर तज़कीर है, तज़कीर का मतलब याद दहानी होता है, उसमें वादा भी है, वईद भी है, जन्नत और दोज़ख सब शामिल है। और तीसरा है अहकाम, यानी वो अहकामात हैं जो इंसान उसका बोझ उठा सकता है, जो उसके लिए नफ़ा बख्श हैं, और उससे बचना, यानी अगर वो गुनाहों से बचेगा तो नफ़ा उस अपने नुकसान से बच जाएगा। यानी अगर इंसान अल्लाह ताला के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो नुकसान किसका है? आप ख़ुद बताइए कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो उसमें नुकसान किसका होगा? ख़ुद उस बंदे का होगा या किसी दूसरे का होगा या अल्लाह ताला का होगा? अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है, वो गनीउल हमीद है, बेनियाज़ है। इंसान का अपना नुकसान होगा ना। जी हाँ बिल्कुल। तो जो अहकामात हमको दिए हैं और जिन चीज़ों से हमको मना किया गया है, तो उसकी वजाहत हमको क़ुरान में मिलती है कि अगर जिन चीज़ों से हमें मना किया गया तो उसमें हमारे लिए क्या नुकसान है, और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया गया तो उसमें हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। और देखें, सूरह फातिहा को उम्मुल क़ुरान कहा जाता है क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं, और सूरह इखलास को क़ुरान का तीसरा हिस्सा कहा जाता है क्योंकि इसमें एक किस्म है, वो है तौहीद। तो इब्ने जज़ीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि क़ुरान में जो मज़ामीन हैं, रुबूबियत, इल्म रुबूबियत, जिससे अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात का, अल्लाह जल्लो जलाल का हमको सबूत मिलता है, और बाकी सब उसकी मखलूक हैं। दूसरा नबूवत का, कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया भेजे और बिलखुसूस हमारे लिए रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, जिन पर अल्लाह ताला ने क़ुरान नाजिल किया। तीसरा माद, जिससे हशर का सबूत हमको मिलता है, कि जो कुछ क़ुरान बताता है हमें कि आखिरत में क्या होगा, जजा सज़ा आमाल नामे हिसाब किताब और आखिरत की हौलनाकियाँ, जन्नत और दोज़ख का जिक्र हमको मिलता है। चौथा अहकाम, इससे मुराद अल्लाह ताला के तमाम अहकामात हैं जिससे मना किया गया और जिससे जिसकी करने की तालीम दी गई है। पाँचवा वादा, कुछ वादे दुनिया की भलाई के ताल्लुक से हैं, जैसे दुश्मनों के खिलाफ मदद, पाकीज़ा ज़िंदगी, अमन, ये सब कुरान हमें बताते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ वादे आखिरत के ताल्लुक से, जैसे जन्नत के औसाफ या नेमतें वगैरह। फिर वार्निंग यानी वईद हमको मिलती है, कुछ वईद दुनिया में ऐसे अंजाम से हमको काम से डराया गया कि अगर तुम ऐसे बुरे काम करोगे तो तुमको दुनिया में ही उसका भुगतना पड़ेगा, जैसे खौफ है, मर्ज है, भूख है, जानो माल और फलों का नुकसान है। और कुछ वईद आखिरत के ताल्लुक से, जैसे अजाब है, कब्र का अजाब है, क़यामत की हौलनाकी है और जहन्नुम में दाखिला है। फिर किस्से हैं इसमें क़ुरान में, कसस के कौमों के साथ, यानी इस बात की खबर देने कि अम्बिया इकराम के साथ उनकी कौमों ने कैसा सलूक किया, और जिन कौमों ने रसूलों का साथ दिया उनको निजात मिली, और जिन लोगों ने रसूलों को झुटलाया वो हलाक हो गए, ताकि बाद में आने वाले लोग उससे इबरत हासिल करें और ऐसे अंजाम से बचें जो पहले लोगों ने किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क़ुरान की कुछ वजाहत थी कि क़ुरान में क्या क्या है। यानी हम क़ुरान किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें और गौर व फ़िक्र कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तफसीर क्यों हम पढ़ रहे हैं। तफसीर के मानी होते हैं, फसरा से निकला है ये लफ्ज़, फ़ासिनरा, फसरा, तफसीर। इसके मानी होते हैं तफसीर क़ुरान का मानी, क़ुरान के मानी खोलना और उसके मकसूद की वजाहत करना, यानी ये जो आयत आई हैं किस मकसद के तहत नाजिल हुई हैं। और ये इल्म उलमाए कराम कहते हैं कि उलूम शरईया में सबसे आला इल्म है, सुभान अल्लाह, जिसके हुसूल के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ही कर सकता है इंसान। और मकाम और मर्तबे के लिहाज से ये सबसे आला और अरफा टॉपिक है, और इसकी अहमियत और इफादियत के लिहाज से सबसे तमाम उलूम में अशरफ उलूम है, ये इल्म है, और हर शख्स इसका मोहताज है। मैं, आप, दुनिया के हर इंसान इसके मोहताज है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। जो हर हिकमत का सरचश्मा, यानी कुरान में हमको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, इसमें हिकमत ही हिकमत है, हर फजीलत का ज़खीरा है यह कुरान, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये तफसीर पढ़ने से, पढ़ाने से दरअसल इसकी गर्ज़ क्या है कि हम दीन के अहकामात पर अमल कर सकें, अपने दीन को मज़बूती से थाम सकें, यानी जो उरवतुल वस्का कहा गया है कि जिसने कुरान को थामा उसने मज़बूत सहारा थाम लिया, तो मज़बूत हलके को पकड़ना है ताकि हम हकीकी असल जो सआदत है, खुशकस्मती है, वहाँ तक पहुँच सकें। तो इसलिए इस इल्म की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर दीनी या दुनियावी कमाल के लिए ज़रूरी है कि पहले हम शरीयत के अहकामात से वाकिफ हों, और ये अल्लाह ताला की किताब ही पर यानी ये इल्म मौकूफ़ है। यानी ये जानना ज़रूरी है कि रसूल अकरम ने उम्मत के लिए कुरान के मानी की ऐसे ही वजाहत फरमाई है जैसे कि उसके अल्फाज की, क्योंकि कुरान खुद क्या कहते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में कि लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप यानी रसूल अकरम लोगों पर उन तालीमात को वाज़ह कर दें जो उनकी जानिब नाज़िल की गई हैं। तो आप देखिए कि सहाबा किराम का क्या मामला था कि वो 10 आयतें सीखते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस वक्त तक आगे ना बढ़ते थे जब तक कि उनके इल्मी और अमली मानी ना जान लेते। तो सहाबा किराम का बयान है कि हमने इल्मी और अमली दोनों तरह कुरान को इकट्ठा ही सीखा है, यानी हम ऐसा नहीं करते कि पहले इल्म सीख ले बाद में अमल करेंगे, हम इल्म सीखते जाते थे और उसको अपने अमल में ढालते चले जाते थे। ज़रूरी भी है। अब अगर आप देखें कि कोई शख्स कोई डॉक्टर बनना चाहता है और वो उसकी फील्ड से रिलेटेड सारी किताबें पढ़ ले, लेकिन उसको वो अमल में ना लाए, तो क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है? नहीं। तो इसी तरह से अल्लाह की किताब के साथ ये मामला कैसे दुरुस्त हो सकता है कि लोग इसकी अहमियत को तो जानें लेकिन इस पर अमल ना करें, इसको समझें ही ना। तो कुरान अल्लाह की किताब है, इसको तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी शख्स मेडिसिन की या मेडिकल की किताबें रट रट कर डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके बारे में छानबीन अच्छी तरह जान ना ले। तो इसी तरह से कुरान भी अगर हम कितना भी रट लें और कितना भी इसको याद कर लें बाय हार्ट, लेकिन इसको समझेंगे नहीं, इस पर अमल नहीं करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सईद बिन जुबैर बहुत ही मशहूर मुफस्सिर गुजरे हैं, वो कहते हैं जिसने कुरान पढ़ा लेकिन उसे समझा नहीं वो अंधे या आराबी की तरह है। और एक और रिवायत में देखिए, हर मुसलमान को कुरान का फहम हासिल करने की ज़रूरत है जो अल्लाह की मज़बूत रस्सी, हिकमतों वाली नसीहत और सीधी राह है। और ये एक सही बात है कि हर कलाम से असल मकसद उसके महज अल्फाज नहीं होते बल्कि उसके मानी का फहम होता है, यानी किस मकसद के लिए वो बात उतारी गई है। लिहाजा कुरान इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक है कि उसे समझा जाए। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं और इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में कहा है कि जो शख्स कुरान के अहकाम सीखे उसे चाहिए कि वह उससे अल्लाह की मुराद को समझे कि उस पर क्या चीज़ फ़र्ज़ है, इस तरह वो पढ़े हुए से फ़ायदा उठा सकता है और उस पर अमल कर सकता है। यानी ये कितनी बुरी बात है कि हामिल कुरान उसके फ़राइज़ और अहकाम को पढ़ तो ले लेकिन जो कुछ उसने पढ़ा उसके मानी ना समझता हो, और कितनी बुरी बात है कि जो कुछ उसने पढ़ा है उससे उसका मफहूम पूछा जाए और वो उसे ना जानता हो। ऐसी हालत वाले शख्स की मिसाल यही हो सकती है जैसे वो एक गधा है जिसने कुरान का बोझ उठाया हुआ है। अब देखिए कुरान में क्या फरमाया गया है कि वमिनहुम उम्मीयून ला यालमून अलकिताब इल्ला अमानी वइनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और कुछ उनमें से अनपढ़ हैं जो अपनी बातिल ख्वाहिशात के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ़ नहीं और वो सिर्फ ज़न से काम लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई कुरान को पढ़े लेकिन जो फ़र्ज़ है उसको ना जाने और उससे फ़ायदा ना उठाए तो उसका पढ़कर क्या फ़ायदा कुरान, अगर उसके मानी ना समझता हो या उसके मकसद को ना समझता हो। तो इसीलिए तो कहा गया था ना जो यहूद के बारे में कि ये लोग ऐसे हैं जैसे गधे पर किताबें लाद दी गई हों, क्योंकि वो तौरात को पढ़ते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे और आम लोगों को पढ़ने ही नहीं देते थे। तो तफसीर का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि कुरान की तफसीर कुरान से की जाए, क्योंकि अगर एक मुकाम पर किसी चीज़ का जिक्र हुआ है तफसील से तो दूसरे मुकाम पर उसका मुख्तसर है, कभी एक जगह मुख्तसर तफसील से तो दूसरी जगह मुख्तसर है। फिर अगर हमें कुरान की तफसीर कुरान से ना मिले तो हम उसे सुन्नत में तलाश करें सही हदीस के ज़रिए से, क्योंकि रसूल अकरम पहले मुफस्सिर हैं कुरान के, पहले शारह हैं, तो सुन्नत ही कुरान की शारह और उसकी वजाहत करने वाली है। और अगर हमें कुरान और सुन्नत दोनों में तफसीर ना मिले तो फिर सहाबा कराम के अकवाल की तरफ हम रुजू करेंगे जो ऑथेंटिक अकवाल हैं उससे, क्योंकि वो यानी सहाबा कराम तमाम दूसरे उलमा से बढ़कर जानने वाले थे कुरान को, क्योंकि वही लोग नज़ूल के वक्त वहाँ मौजूद थे, उन्हीं के सामने कुरान नाजिल हो रहा था, वो अच्छी तरह जानते थे कि कब किस वक्त कौन सी आयत नाजिल हुई, उनको पूरा इल्म था और उनका फहम पुख्ता था, सही इल्म उनको हासिल था और उनके पास अमल सौले था, ख़ासकर जलीलुल क़द्र सहाबा जैसे कि चारों खुलफाए राशिदीन इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद वगैरह हैं। फिर अगर सहाबे किराम के भी हमको कोई अकवाल ना मिले तफसीर में, तो फिर हम ताबईन के अकवाल की तरफ रुजू करेंगे जिन्होंने सहाबा से इल्म हासिल किया था और जो सहाबा की तरबियत याफ्ता थे। और इसीलिए जो रसूल अकरम ने जो दौर की तारीफ की थी, खैरुल कुरूनी करनी सुमल्लज़ीना यलूनहुम सुमल्लज़ीना यलूनहुम, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु कहते कि तफसीर चार पहलुओं पर हो सकती है। एक पहलू यह है कि वह कलाम अरबों में मारूफ हो, दूसरा ये कि तफसीर ऐसी है कि कोई शख्स उसकी लाइलमी का उज़्र ना कर सके, तीसरा ये कि उलमा जानते हों, और चौथा पहलू ये कि जिसकी तफसीर अल्लाह ताला किसी और कोई नहीं जानता, अगर कोई इसे जानने का दावा करे तो वह झूठा है, जैसे मुतशाबिहात हैं। तो ये तमाम उसूल हैं जिनको सामने रखकर हम समझने की कोशिश करेंगे सूरत आल इमरान को। क़ुरान इस लिहाज से मुमताज़ है कि वो अपने से पहले आने वाली किताबों की निगहदाश्त करने वाला है, उनका अमीन और उन पर शाहिद है, और दर्जे और मर्तबे में उन सबसे बुलंद और बरतर है, क्योंकि उन किताबों में जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल किया था उसमें ख़बरें थीं, उन सब को क़ुरान ने बरकरार रखा और बल्कि मज़ीद तफसील भी बता दी है। लेकिन पहली किताबों में हम सब जानते हैं कि तहरीफ हो चुकी है, यानी जो आसमानी किताबें थी कौन सी आसमानी किताबें थी पहले की, तीन किताबों का जिक्र हमको मिलता है, बताएंगे आप लोग कौन सी किताबें हैं जो पहले नाजिल हुई थी क़ुरान से पहले? जी तौरात, इंजील और ज़बूर। वेरी गुड, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़िकुम। तो पहले भी किताबें नाजिल हो चुकी थी, लेकिन क्या उन किताबों को हम मान सकते हैं आज? नहीं मान सकते। क्या हो चुका है उसमें? टेक्स्ट भी चेंज किया जा चुका है, तहरीफ हो चुकी है, हर्फ बदले जा चुके हैं, ठीक है ना, हरूफ को बदल दिया गया है उसमें। तो क़ुरान क्या करता है? क़ुरान ने उन तमाम किताबों को क़ुरान ने जमा कर लिया है, क्योंकि क़ुरान को मुहैमिन कहा जाता है कि पिछली तमाम किताबों की बातें भी इसमें जमा है, उसकी हिफाजत है इसमें और उसकी तफसील भी है। और क़ुरान ख़ुद एक मौजज़ा है, मखलूक इस बात पर क़ादिर नहीं कि जैसा एक कोई एक सूरत ही बना लाए। तो जो शख्स क़ुरान पढ़ने के लिए आता है, क़ुरान की तरफ आता है, वो सादे दिल के साथ क़ुरान की तरफ आए और कोई पर्टिकुलर सोच लेकर ना आए। तो अल्लाह का कलाम सब कलामों पर और उसकी सिफ़ात तमाम मखलूक की सब सिफ़ात पर फजीलत रखती हैं। तो क़ुरान अल्लाह का कलाम है, क़ुरान से मतलब उसके मानी का फ़हम और उस पर अमल करना है। अगर क़ुरान के हाफिज़ का यह कसद ना हो तो वह अहले इल्म से है ना अहले दीन से है। तो क़ुरान के ख़जाने बहुत सारे हैं, जब आप क़ुरान में गौर करें, सोच विचार करके पूरी गहराई तक चले जाएँ, तो आप उसमें मनाज़िरों के इसरार, सही दलाइल का सबूत और जो बुरे शुभात हैं उसको ग़लत पाएंगे। इसमें ये क़ुरान हर किस्म के नक्श से पाक है। तो जो शख्स को अल्लाह ताला बसीरत दे, या जिसको अल्लाह ताला ने बसीरत दी हो, तो वो ज़रूर इस क़ुरान की तरफ रुजू करे और इससे अल्लाह ताला का जो मकसद है उसी बात को लोगों को बताए और समझाए। इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब तुम क़ुरान से फ़ायदा उठाने का इरादा करो तो उसकी तिलावत और उसे सुनने के वक्त दिल से बाकी सब ख्याल निकाल दो और अपने कान उसी तरफ लगा दो और उसके हुजूर इस तरह हाजिर हो जैसे कि वो क़ुरान तुम्हें ख़ताब कर रहा हो, कि ये कलाम कौन कर रहा है और किससे कर रहा है, क्योंकि ये ख़ताब अल्लाह ताला की तरफ से है और तेरे ही लिए है जो उसके रसूल की ज़ुबान पर अदा हुआ है। सुभान अल्लाह, यानी जब हम क़ुरान पढ़ें तो ये समझे कि यह क़ुरान आपसे मुखातिब है और ये अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह ताला कलाम फरमा रहा है और मुखातिब हम लोग हैं, मैं और आप हैं। और इसीलिए क़ुरान कहता है कि क़ुरान में उस शख्स के लिए नसीहत है जो दिल आगाह रखता हो, यह खूब मुतवज्जह होकर सुने और उसका दिल हाजिर हो। इन फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहु क़ल्बुन अव अल्क़ा समअ वहुवा शहीद। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके पास किसी का कोई ख़त आता है और वो दूसरी ज़ुबान में हो और वो ख़त आपको पता चले कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम पर्सन की तरफ से आया, कोई बहुत बड़े पर्सन की तरफ से आया हो, तो आप क्या करेंगे अगर आपको लैंग्वेज ना जानते हो? अगर आपके पास किसी का ख़त आए और आपको वो लैंग्वेज ना आती हो और बहुत ही अहम पर्सन की तरफ से वो ख़त आया हो, आप किसी के पास भागे भागे जाएंगे ना कि जिसको लैंग्वेज आती हो? जी हाँ, लैंग्वेज जानने वाले के पास जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तब आप मुझे बताइए कि अल्लाह की किताब हमारे पास आई है और वो हमारी लैंग्वेज में नहीं है, हम जो हमारी मदर टंग है ये अरबी ज़बान में है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको सीखने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, जब तक हम वो ख़त पढ़ नहीं लेते हमें परेशानी रहेगी ना, हमें करार नहीं आएगा। और जब तक हम पढ़कर उसको समझ ना लें, उस पर अमल ना कर लें, तो फिर अल्लाह के कलाम की क्या अजमत है, जो बादशाहों का बादशाह सुभान अल्लाह, जो खालिक है, जो मालिक है, सब कुछ सारे अख्तियारात उसके पास हैं। अगर वो कुरान को ज़मीन पर नाजिल करता तो कुरान उसे काट डालते, नहीं अगर पहाड़ों पर नाजिल किया होता तो पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाते, पहाड़ फट जाते। लेकिन ए इंसान, तो इस बात का कोई एहतमाम नहीं करता है कि तू कुरान पढ़ता है, किरात करता है, और उसके मानी समझने का तो हरीस नहीं है, यानी तुझे कुरान पढ़ने और इसके मफहूम समझने का कोई शौक ही नहीं है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। और कुरान को छोड़ना क्या है, उसकी छोड़ने की कई किस्में हैं कुरान को छोड़ने की। उस पर ईमान ना लाना, कुरान का पढ़ना और सुनना छोड़ देना, उसमें गौर व फिक्र ना करना, उस पर अमल ना करना, उसके मुताबिक फ़ैसले ना करना, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए कुरान से शिफा हासिल ना करना, ये तमाम कुरान को छोड़ने की किस्में हैं जिन्होंने कुरान को तर्क कर दिया। और जिस शख्स ने कुरान तो पढ़ा लेकिन उसका मानी ना समझा, उसने भी कुरान को छोड़ दिया। और उस शख्स ने भी कुरान को छोड़ दिया जिसने उसे पढ़ा, उसका मानी समझा, लेकिन पढ़ने और समझने के बावजूद उस पर अमल ना किया, ये सब लोग अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों में दाखिल हैं। और इसीलिए सूरह फुरकान में कहा गया, وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا। رسول اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ تو کتاب اللہ سے خیر خواہی کیا ہے؟ الدین النصیحہ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم۔ دین خیر خواہی ہے اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں سے۔ اور اللہ کی کتاب سے خیر خواہی ہے کہ یہ پر ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی وحی اور اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لوگوں کے کلام میں سے کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی تعظیم اور اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے علوم اور مثالوں کو سمجھا جائے، اس کے حلال و حرام کا علم حاصل کیا جائے، اور قرآن والوں، حفاظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں سب کی تعظیم کی جائے، اور قرآن کی طرف دعوت دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال بہ صدق ومن حکم بہ عدل ومن عمل بہ اجرا ومن دعی الیہ ہدیا الی صراط مستقیم۔ ترمذی کی حدیث ہے، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے اس کی تصدیق کی، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر ملے گا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی سیدھی راہ کی طرف ہدایت پا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کی تفسیر کے تعلق سے اور اس پر، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھی۔ سورۃ آل عمران 200 آیات ہیں، اس میں مدنی سورت ہے۔ اس کو علماء کرام نے، مفسرین نے 7 پیراگراف میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اہل کتاب کے تعلق سے ہیں، جس میں 1 سے 101 تک آیات ہیں۔ دوسرا حصہ امت مسلمہ کے تعلق سے ہے، جہاں 102 آیت سے لے کر 200 تک چلتا ہے ٹاپک۔ اس کا جو مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم، اسلام کے غلبے کے لیے 4 تدبیریں اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پہلا ہے اہل کتاب کو دعوت، دوسرا ہے اہل کتاب کے خیر سے استفادہ، یعنی فائدہ حاصل کیا جائے، تیسرا اہل کتاب کے شر سے اجتناب، اور چوتھا ہے مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور اتفاق اور مضبوط تنظیم۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں، یعنی اس کا جو سینٹرل تھیم ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت، اتفاق و اتحاد کی بات کی گئی ہے، کہ ہم دنیا میں غلبہ اسی وقت پا سکتے ہیں جب ہم آپس میں ایک جٹ ہوں۔ انما الاعلون ان کنتم مومنین، یعنی ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوں گا اور ہمارے آپس کے تعلقات جتنے مستحکم ہوں گے، تبھی اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ اور عزت نصیب ہو سکتی ہے۔ پہلا جو پیراگراف ہے اس میں تمہید ہے دوسرے پیراگراف میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، تیسرے پیراگراف میں عقیدہ تثلیث یعنی جو ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے جو کرسچن مانتے ہیں وہ کس طرح سے باطل اور غلط ہے اس کو بتایا گیا ہے، اس میں مریم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چوتھے پیراگراف میں اہل کتاب کے جو شرط ہے اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ پانچویں پیراگراف میں امت خیر کے لیے ہدایات ہے یعنی ہمارے لیے، اور چھٹے پیراگراف میں جنگ احد کی شکست اور نفاق پر تبصرہ کیا گیا، اور ساتویں پیراگراف میں اختتامیہ ہے یعنی اور مسلمانوں کو کس طرح سے مربوط رہنا ہے۔ اس کا زمانۂ نزول زیادہ تر حصہ جنگ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوا، جب کئی صحابہ کی شہادت کے بعد بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں اور بچے یتیم ہو گئے تھے، تو ان کے مسائل کا حل اس میں بتایا گیا۔ اور دوسرا آیت نمبر 33-70 تقریباً 9 ہجری میں نازل ہوئی، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن مدینہ میں آیا تھا اور انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، آیت مباہلہ بھی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے کہ روزہ قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے آل عمران اور سورۃ البقرہ دو بادلوں، دو سایوں اور دو روشنیوں کی صورت میں ظاہر ہو کر جھگڑا کریں گی یعنی آئیں گی۔ صحیح مسلم، سورہ فاتحہ میں الضالین کا لفظ آیا تھا، تو قوم نصارہ کے خلاف فرد جرم کا ذکر سورۃ آل عمران میں موجود ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں سے بچا یا جن پر تیرا غضب ہوا، تو یہاں پر بھی ہم کو سورہ آل عمران میں ضالین لوگوں کا ذکر ملے گا جو کہ بھٹک گئے تھے، سیدھی راہ سے سیدھا چلتے چلتے بھٹک گئے۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں ہم کو دعا سکھائی گئی تھی کہ فنصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ یہاں سورہ آل عمران میں کافروں پر غلبے کی 4 تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں اہل کتاب اسپیشلی یہود کے خلاف وہاں پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، یہاں سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں اہل کتاب میں سے بالخصوص نصارہ کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں مغضوب کی تفصیل تھی یعنی جن پر غضب کیا گیا، اور یہاں الضالین کی تفصیل ہے یعنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں امت مسلمہ کو امتم وسطن کہا گیا تھا، متوازن قوم کے خطاب سے نوازا گیا، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں انہیں خیرہ امت کہا گیا یعنی بہترین امت کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا۔ الحمدللہ، الف لام میم پہلی آیت حروف مقطعات میں سے ہے، اور ہم یہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں کہ اس کا مطلب اور معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، نہ صحابہ اکرام نے، نہ تابعین نہ تبع تابعین نے، تو یہ اللہ ہی اس کا مطلب جانتا ہے۔ کوئی اگر اس میں کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے تو وہ زیادتی کرتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت میں زیادتی ہوگی اور اپنی طرف سے کوئی بات کہنا ہوگا۔ تو لہٰذا الف لام میم کو ہم الف لام میم ہی پڑھیں گے، اور آپ دیکھیں کہ الف لام میم لام اور میم جڑا کر لکھا گیا ہے، لیکن ہم اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ مقطعات، حروف مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قطع کیے گئے الفاظ، یعنی جس کو ہم الگ الگ پڑھیں گے، اور سبحان اللہ سے قرآن کی عظمت اور اس کی حفاظت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیسے اس کی حفاظت کی گئی، کہ لکھا تو جاتا ہے لام اور میم ساتھ میں لیکن پڑھا جاتا ہے الگ الگ، کیونکہ رسول اکرم نے اس کو ایسے ہی پڑھا تھا، آپ کا دیکھا دیکھی صحابہ نے اس کو ایز اٹ از پڑھا، اور صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے اس کو ایز اٹ از پڑھا، اور پھر یہ تواتر کے ساتھ ہم تک اسی طرح پہنچا۔ لہٰذا لکھا تو جائے گا ملا کر لیکن پڑھا جائے گا قطع قطع الگ الگ، الف لام میم۔ اور جب حروف مقطعات آتے ہیں تو زیادہ تر قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں کہ اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ الحی القیوم، یہ صفت آئی ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی کہ وہ خود الحی ہے اور زندگی دینے والا ہے، یعنی خود تو وہ اول ہے اور آخر ہے، یعنی اس نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، وہی اول وہی آخر، اور یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور وہ قیوم بھی ہے یعنی خود قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اللہ، اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور الحی القیوم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں سے ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان الہ کی جو لازم صفات ہے، اس سے معلوم ہے کہ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ و قائم و دائم ہو، और पूरी कायनात के इंतज़ाम को संभालने वाला हो, और इस पूरी कायनात का जो निज़ाम है उसमें उस पूरी कुदरत और पूरे इख्तियारात उसी के पास हो। जिस इलाह में ये सिफात ना पाई जाए वो इलाह नहीं हो सकता। तो इससे ये पता चलेगा कि इसके अलावा जो भी माबूदान बातिल हैं, ख्वाह वो जानदार हों, मौजूद हों या फौत हो गए हों, ख्वाह बेजान हों, सबकी नफ़ी हो जाती है, सबका रिजेक्शन हो जाता है। तो क़ुरान के ताल्लुक से हम देखते हैं कि क़ुरान के उलूम में एक इल्म मुखासमा है, यानी वो इल्म जिसके ज़रिए बातिल फ़िरकों के जो अकायद हैं या उनके जो नज़रियात हैं उसकी तरदीद की गई है, यानी उसको रिजेक्ट किया गया है। जब क़ुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त तीन बड़े मेन लोग थे जो मुख्तलिफ अदियान को मानते थे, जो क़ुरान के मुखातिब रहे, जो मुसलमानों के हरीफ भी थे। एक तो मुशरिकीन थे, दूसरा यहूद थे और तीसरा नसारा थे। तो सूरह बकरा में मुशरिकीन के अलावा यहूद पर भी अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र किया गया, उनकी वादा खिलाफियों का जिक्र किया गया और उनके जो बातिल अकायद थे यानी उनके गलत नज़रियात थे उसका तफसीली जिक्र किया गया था। जबकि सूरत आल इमरान में मुशरिकों के अलावा नसारा का जो गलत अकीदा है उसका तफसीली जायज़ा लिया गया है, क्योंकि नसारा किसको इलाह मानते हैं, उन्होंने कैसे अपनी राह गुम कर ली, कैसे वो दौलदीन हो गए। आप बता सकते हैं नसारा का अकीदा कैसे ख़राब हुआ, कैसे गलत हुआ, क्या चीज़ मानते हैं वो लोग? जी ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं। जी बिल्कुल। और कुछ लोग तीन खुदाओं के कायल हैं जिसमें वो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के साथ मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक करते हैं, और कुछ लोग अल्लाह सुभान व तआला के साथ जिब्रील अमीन को और ईसा अलैहिस्सलाम को शामिल करते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अलयाज़ बिल्लाह। तो नसारा ने राह गुम कर दी, दौलीन हो गए, भटक गए और गुमराह हो गए। तो यहाँ पर दरअसल इसीलिए अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब हम देखिए मरियम अलैहिस्सलाम, तो हमको खुद उनकी पैदाइश का जिक्र मिलता है कि वो पैदा हुई तो वो एक इंसान थी। ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो खुद यानी वो खुद एक इंसान थी। उनकी वालदा ने नज़र मानी थी कि जो भी मेरे पेट में बच्चा है वो मैं उसे तेरी नज़र करती हूँ, लेकिन वो क्या था, बेटा होने के बजाय वो बेटी हो गई, वो मरियम अलैहिस्सलाम थी। तो वो पैदा हुई तो वो कैसे इलाह हो सकती हैं भला। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम वो खुद मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, मौजज़ाती तौर पर पैदा हुए बग़ैर बाप के, लेकिन पैदा तो हुए ना, तो वो इंसान ही हुए। और वो उठा लिए गए आसमानों की तरफ, यानी उनका उठाया जाना भी मौजज़ा है, और वो दोबारा नाजिल किए जाएंगे क़यामत से पहले और फिर तबई मौत मरेंगे। तो फिर इंसान कैसे इलाह हो सकते हैं भला, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह सुभान व तआला तो वो इलाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो अल्हय है अल्क़य्यूम है, सुभान अल्लाह। तो इस सूरत की ज़्यादातर जो आयत आपको मिलेंगी, तकरीबन 80 से ज़्यादा आयत, ईसाइयों से मुबाहसा करते हुए, उनकी जो सोच या उनका जो मज़हब था उसकी तरदीद करते हुए, इसको रिजेक्ट करते हुए और उनको सच्चे दीन यानी इस्लाम की तालीम को कबूल करने की दावत पर मुश्तमिल है। जैसे कि सूरह बकरा में यहूद मुखातिब थे, तो ये सूरत दरअसल अल्लाह ताला की उलूहियत के ऐलान से शुरू की गई है कि वो वाहिद है, अहद है। अल्लाह ताला यहाँ ख़ुद फरमा रहे कि उसके जैसा कोई माबूद हो ही नहीं सकता, वही माबूद बरहक है, इबादत सिर्फ उसी की होगी और उसी के लिए होनी चाहिए, और जो कोई अल्लाह के अलावा जिस किसी को माबूद बनाएगा तो उसने झूठा सहारा थामा। जिसकी भी पूजा की जाती है अल्लाह के अलावा वो सब बातिल हैं, अल्लाह ही सच्चा माबूद है और वही सही इलाह है, तमाम सिफात उसी से मौसूफ़ हैं और उसमें सबका ताल्लुक हयात और क़य्यूमियत की सिफात से है। अल्हय्यु से मुराद ये है कि उसे अजीम तरीन और कामिल तरीन हयात की सिफात हासिल हैं, जो तमाम सिफात को मुस्तलज़िम है, यानी उसके बग़ैर सिफात हयात की तकमील ही नहीं हो सकती। जैसे कि समा है, बसर है, कुदरत है, कुव्वत है, अज़मत है, बका है, दुआम है, गलबा है, ये सब अल्हय्यु में आ गए, सुभान अल्लाह। और अल-क़य्यूम का मतलब है कि वो खुद बखुद कायम है, लिहाजा तमाम मखलूक़ात से बेपरवाह है, यानी अल्लाह ताला को किसी ने कायम नहीं किया, अल्लाह ताला ख़ुद कायम है और वो सबको कायम रखने वाला है, इसलिए कि तमाम मखलूक़ात वजूद में आने, तैयार होने, तरक्की करने में उसकी मोहताज है, सुभान अल्लाह। वाकई में वही रब है, वही खालिक है, वही मालिक है, वो तमाम मखलूक़ात का मुदब्बिर, उनमें तसरुफ़ करने वाला है, यानी अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। जिस्मों, रूहों और दिलों के तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में हैं। उसकी क़य्यूमियत और रहमत की बिना पर उसने अपने मोहम्मद पर वो किताब नाजिल की जो सबसे अजीम किताब है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ पर अपना तारुफ करवाने के बाद जिस अहम बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. نزل نازل کیا عليك آپ پر الكتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ مصدقا تصدیق کرنے والی لما بين يديه واسطے اس کے جو آپ کے ہاتھ میں اور آپ سے پہلے جو نازل ہوئی تھی. یعنی قرآن سے پہلے کون سی نازل ہوئی تھی؟ انجیل اور تورات, ان کی تصدیق کرنے والی ہے. امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ انزل التورات والانجیل, ایک ساتھ نہیں کہہ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کہ انزل التورات انجیل نہیں, بلکہ وہ کا بیچ میں لفظ آیا ہے, ایک جملے میں نہیں ہے. لیکن قرآن صرف نزل القرآن, اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مفصل ہے, یعنی اس میں وہ تمام کتابوں کو بھی جمع کر دیا گیا ہے قرآن میں. اس لیے قرآن مہیمن ہوئی تمام کتابوں کی. اور قرآن کی فضیلت اور کیا ہے کہ مصدق لما بین یدیہ, یعنی پچھلی کتابوں کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے, یعنی اس میں پچھلی کتابیں بھی شامل کر دی گئیں. یعنی یہی قرآن ہی ہمارے تزکیے کے لیے کافی ہے. قرآن میں جو بات ہوگی وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, قرآن کے خلاف جو بات ہوگی وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی, مردود ہوگی. جو کچھ قرآن میں ہے وہی حق ہے, جو اس کے علاوہ ہے وہ باطل ہے. جو کچھ اس میں بھیجا گیا ہے فرشتے کے ذریعے سے, جبریل امین کے ذریعے سے, وہی حق ہے, اور اس کی صداقت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور جو پہلے کی کتابیں ہیں, چونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے, لہٰذا اس پر اب ایمان لانا, یعنی ہم ایمان تو رکھیں گے کہ ہم تورات اور انجیل کو مانتے ہیں, لیکن اصل اب ہمارا ایمان قرآن پر ہوگا. یہ بات پر تو ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھیں لیکن اب ان میں تحریف ہو چکی ہے, تو لہٰذا ہمارے لیے جو فرقان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا. اور اسی لیے اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب اگر اس پر ایمان لاتے ہیں قرآن پر تو ہی وہ مسلمان ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں تو ہی مسلمان ہیں, ادروائز نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو کہ الحی القیوم ہیں, اس نے اپنے بندے کے قلب پر یہ کتاب نازل کی, جو سب سے عظیم کتاب ہے, جس کی خبریں اور احکام حق ہیں. اس نے, یعنی قرآن نے جو خبریں دی ہیں وہ سچی ہیں, جو احکامات قرآن نے دیے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں. اس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ بندے اس کتاب کا علم حاصل کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ کتاب نازل کی گئی اس لیے ہے کہ ہم اس کتاب کا علم حاصل کریں اور صحیح طریقے سے اپنے رب کی عبادت کریں. مصدق لما بین یدیہ, جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے کتابوں کی, یعنی پہلی گزشتہ کتابوں کی بھی تائید کرتی ہے. تو جس مسئلے کے حق میں قرآن فیصلہ دے وہی مقبول ہے, اور جس کی یہ تردید کرے وہ ناقابل قبول ہے. یہ ان تمام مسائل کے مطابق ہے جن پر تمام رسولوں کا اتفاق ہے, ان سے اس کا سچا ہونا ثابت ہے. یعنی قرآن ہمیں پہلے رسولوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ سچے تھے. تو اہل کتاب جب تک قرآن پر ایمان نہ رکھیں تب تک اپنی کتابوں کو سچا نہیں مان سکتے, کیونکہ قرآن کا انکار ان تمام کتابوں کا انکار ہے. اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے. تو سبحان اللہ, یہاں پر قرآن کے نزول کی بات کی گئی ہے, اور ابھی ہم نے قرآن کی ہی ساری ڈیٹیل پڑھی آپ کو. ابھی جو ہم پہلے پڑھتے آ رہے تھے تو قرآن کی ہم نے تفصیل پڑھی کہ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. قرآن کو بے سمجھے بوجھے پڑھنا ایسے گویا کہ آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں, اور یہ قرآن کو ترک کرنے کے معنوں میں آئے گا. تو آج ہم یہ تین آیات ہی کرتے ہیں, انشاءاللہ باقی کا حصہ ہم اگلے ہفتے کریں گے. ویسے میرا ارادہ ہے کہ ایک ایک پیج کے ساتھ ہم جائیں, اور اگر کبھی موقع نہ ملے اور ڈیٹیل زیادہ ہو تو پھر ہم ہاف پیج لے لیا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو, اس کتاب کو اچھی طرح سمجھ سکیں, اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہو, اور اس سے ہماری زندگی میں چینج آئے, اور ہم سچے اور اچھے مسلمان بنیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.